नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के तराई क्षेत्र और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा और सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। कैमूर और अरवल में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य के एक दिवसीय दौरे पर, पटना में कैलाशपति मिश्र की जयंती शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। और आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है। राज्य में डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के तराई क्षेत्र और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा और सोन नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल नदी में 1,80,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैमूर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाली कर्मनासा, दुर्गावती और सुआरा जैसी मौसमी नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्गावती नदी का पानी रामपुर प्रखंड के निचले इलाकों में फैल गया है। जिले के 11 प्रखंडों में राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन और मेडिकल टीम का गठन किया गया है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से शहर के मुख्य मार्गों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जहानाबाद में लगातार हो रही बारिश से वर्षों से सूखी जमुना नदी में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत कई स्थानों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई जिलों में अनेक स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। रोहतास के दिनारा में सबसे अधिक 100.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 346 नए मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 165 नए मामले मिले हैं। इधर भागलपुर में 25, नवादा में 15, पूर्वी चंपारण में 12 और बेगूसराय में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में डेंगू पीड़ितों की संख्या 7,500 के करीब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की जा रही है। नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जतिन आहूजा ने डेंगू से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी है।
डेंगू जैसा कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि एक मच्छर से काटने के बाद डेंगू होता है, और इसके लक्षण में जैसे हम देखते हैं बुखार आना, बॉडी में रैश आना, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले होता है कि अपने जो कपड़े होते हैं, लॉन्ग पैंट्स पहनना, लॉन्ग स्लीव पहनना, पहला तो यही सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि जहाँ पे आपके घर के पास या घर के अंदर अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी को इकट्ठा ना होने दें। थर्ड, आप मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं होते वक्त। फोर्थ, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो काफी कॉमन होती हैं, खुद में भी और अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट्स को आप अवॉइड कर सकें।
केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर 100 रुपए बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए
एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी है।
उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहने हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद किया गया।
वहीं कैबिनेट ने बिहार की उत्तर कोयल नहर परियोजना के बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय हिस्सा के रूप में 1836 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के पूरा होने पर औरंगाबाद और गया समेत 4 जिलों में 42,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1975 में शुरू हुई उत्तर कोयल नहर परियोजना से बिहार और झारखंड में कुल 1,12,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है, जिसमें अभी कुछ भूभाग में सिंचाई होती है। केंद्रीय कैबिनेट से इस परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से मगध प्रमंडल के बड़े भूभाग में सिंचाई की बेहतर सुविधा सुलभ हो सकेगी। उत्तर कोयल नहर परियोजना बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है और यह औरंगाबाद गया समेत 4 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर।
केंद्र सरकार ने हल्दी और इससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह बोर्ड हल्दी से जुड़े मुद्दों और मसाला बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री नड्डा पार्टी संस्थापक नेताओं में से एक कैलाशपति मिश्र की जयंती शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। वे पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जयंती शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के बाद श्री नड्डा पार्टी की राज्य कोर समिति और भाजपा विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। श्री नड्डा की यात्रा को आगामी लोकसभा चुनाव, INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठकों और राज्य में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा इकाई कैलाशपति मिश्र के जयंती शताब्दी समारोह के सिलसिले में राज्य में 6 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं।
आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। वन्य जीव विशेषज्ञों, पशु प्रेमियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग के बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बिहार में डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन का प्रचलित नाम सोस भी है। डॉल्फिन दिवस के अवसर पर भारतीय जूलॉजिकल सर्वे कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अररिया जिले में पनार सहित महानंदा की विभिन्न सहायक नदियों में डॉल्फिन संरक्षण के लिए 2 दशक से अधिक समय से काम कर रहे वन्य जीव प्रेमी सुदन सहाय कहते हैं कि युवा पीढ़ी में डॉल्फिन संरक्षण और संवर्धन को लेकर चेतना लाने की जरूरत है। बिहार राज्य वन संरक्षण बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री सहाय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि मछुआरों ने डॉल्फिन संरक्षण के लिए काफी सहयोग किया है। इन परिस्थितियों में उनकी आजीविका का ध्यान रखना जरूरी है और प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध करानी चाहिए।
डॉल्फिन बिहार में जो कई नदियों में पाए जाते हैं, लाइक रिवर महानंदा, कोसी रिवर, कोसी रिवर, जहाँ ये अच्छी संख्या में है, उसमें अवेयरनेस के लिए सपोर्ट चाहिए ताकि डॉल्फिन का संरक्षण और संवर्धन होता जाए। ये सभी के स्वास्थ्य का साइन है कि जहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं वहाँ सभी बहुत स्वस्थ दिखा गया। आई थिंक डॉल्फिन को स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में इसको इम्पोर्ट किया जाए और मछुआरों के वेलफेयर के लिए जोड़ा जाए ताकि उनके भी आने वाले पीढ़ी पर जागृत हैं और लाइवलीहुड जो मछुआरे हैं उनके लाइवलीहुड की डिफरेंस वेलफेयर प्रोग्राम चलाना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि और भी उसके सेफ्टी के लिए काम करे।
प्रदेश के सभी जिलों में 1 दिसंबर से यातायात पुलिस की ओर से मैनुअल चालान पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि मैनुअल चालान पूरी तरह बंद होने के बाद सिर्फ ई चालान ही दिया जाएगा। इसके तहत हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान किया जाएगा। पटना नगर निगम की दैनिक सफाई कर्मियों की 14 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। नगर निगम प्रशासन और पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार समझौते के तहत निगम प्रशासन ने हड़ताली कर्मियों की अधिकांश मांगों को मान लिया है। वहीं कई मांगों के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी है। चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार सफर जारी है और आज खेल के 12वें दिन देश को कई और पदकों की उम्मीद है। आज तीरंदाजी की महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परिणीति और अदिति की तिकड़ी ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 12 पदक जीते। भारत 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित 81 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का ये तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
विश्व कप क्रिकेट आज से शुरू हो रहा है। भारत की मेजबानी में आयोजित किए जा रहे क्रिकेट के इस महाकुंभ में 10 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार ने सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सॉल्वर गैंग का खुलासा, अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने वाले सिपाही को पटना पुलिस ने नालंदा से दबोचा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर की सुर्खी दी है, शातिरों ने फर्जी अधिसूचना जारी कर परीक्षा की नई तारीख बताई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सिक्किम में बादल फटा, 22 जवानों समेत 81 लोग लापता, लगातार बारिश से राहत और बचाव कार्य हो रहा है बाधित। आज अखबार का शीर्षक है, पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल समाप्त। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के तराई क्षेत्र और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा और सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, कैमूर और अरवल में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य के एक दिवसीय दौरे पर पटना में कैलाशपति मिश्र की जयंती शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। और आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है। राज्य में डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।